शिवांशा ने वेद को अपना सपना बताया था। उसका पढ़ने या करियर बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस वो एक नॉर्मल हाउसवाइफ की लाइफ बिताना चाहती थी, जो वेद कभी नहीं चाहता था। वेद ने उसे तैयार होने का कहा ताकि आज वो कॉलेज में अपना एडमिशन फॉर्म सबमिट करवा सके। वेद चाहता तो खुद भी शिवांशा को साथ लेकर जा सकता था, लेकिन वो यही चाहता था कि शिवांशा अब अकेले बाहर जाना सीखे। इसी तरह उसका कॉन्फिडेंस वापस आने वाला था। सुबह के लगभग 9 बजे के करीब वेद और शिवांशा बाकी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। अक्षत वहां नहीं था क्योंकि वो मिहिका के साथ किसी प्रोजेक्ट के चलते आउट ऑफ स्टेशन था। कल रात नव्यांशी और अरमान के रिश्ते की वजह से हुई बहस के चलते अभी भी वंश का मुंह बना हुआ था। ऊपर से नव्यांशी भी उसकी नहीं सुन रही थी। वेद ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के कहा, देखो इस तरह मन में बातें लेकर मत बैठे रहो। तुम क्या चाहते हो कि मैं नवी का दिल तोड़ दूं और उसे ये कह दूं कि वो अपने इमोशंस का गला घोट ले? लेकिन आप उसे समझा तो सकते हैं ना, वो आपकी बात जरूर समझेगी, वंश ने कंधे उठाकर कहा। तुम्हें लगता है ये इतना आसान है? फिर तुम क्यों नहीं कर पाए? बात तो तुमने भी की थी ना उससे, वेद बोला तो वंश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। जब वंश की नव्यांशी से बात हुई थी तब उस वक्त वंश के अलावा वहां आराध्या मौजूद थी। उसने तुरंत आराध्या की तरफ देखकर कहा, तुमने बताया भाई को? इसने कुछ नहीं बताया है और ना ही मेरी नव्यांशी से बात हुई है, वेद ने बीच में दखल देते हुए कहा। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और उतने ही अच्छे से नवी को भी। मैं तुम लोगों की लाइफ उतनी ही कंट्रोल कर सकता हूँ जितनी तुम लोगों के लिए सही हो। प्यार, शादी और कौन सा करियर सेलेक्ट करना है, इन सब में मैं कभी इंटरप्ट नहीं करने वाला हूँ, वेद अपनी तरफ से उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। शिवांशा गौर से उनकी बातों को सुन रही थी। वो मन ही मन बोली, जब उनके करियर में दखल नहीं दे रहे हैं तो फिर मेरे में क्यों? वेद की नज़र शिवांशा की तरफ गई। जिस तरह वो उसे भौंयें सिकोड़ कर देख रही थी, वेद को उसके बिना बोले ही उसके चेहरे से सब समझ आ रहा था। वेद ने सिर हिलाया और सख्ती से कहा, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो और करियर और एजुकेशन कंप्लीट करने में फ़र्क होता है। शिवांशा ने तुरंत घबराकर अपनी नज़रें नीचे कर ली थीं। वंश उन दोनों को गौर से देख रहा था और उनकी बातें भी सुन रहा था। उसने वेद से कहा, आप फिर से भाभी को डरा रहे हैं? हाँ बेशक, तुम इसे डराना कह सकते हो। याद है ना, अक्षत ने भी अब्रॉड पढ़ने से मना कर दिया था लेकिन फिर भी उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा गया। तो कुछ ऐसा ही हाल इसका है। इसकी स्टडीज अभी कंप्लीट नहीं है और उसे पूरा करने के लिए इसे डराना, धमकाना, जो भी करना पड़े मैं करूंगा, और तुम बीच में नहीं बोल सकते हो, वेद ने वंश को भी डांट दिया था। कुछ पल के लिए वहां बिल्कुल खामोशी छा गई थी। वेद और शिवांशा के मामले में भले ही वंश बीच में नहीं बोल सकता था, लेकिन वो नव्यांशी के मामले में चुप नहीं रहने वाला था। मुझे अरमान राजावत नव्यांशी के लिए पसंद नहीं है, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर भी दें तो उसका करियर अभी स्टेबल नहीं है। वो नव्यांशी को वो सब कभी नहीं दे पाएगा जो उसे इस फैमिली में मिला है, वंश ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि नव्यांशी इतनी इनकेप में है कि खुद की छोटी मोटी ज़रूरतों को खुद से पूरा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम में से किसी को अपने पार्टनर पर डिपेंडेंट रहना नहीं सिखाया, वेद ने उसे घूरते हुए कहा। लेकिन भाई, वंश ने फिर से बीच में बोलना चाहा, लेकिन इस बार उसकी बात पूरी होने से पहले ही वेद ठंडी आवाज में बोला, सुबह सुबह मुझसे बहस मत करो वरना पूरे दिन मेरे सिर में दर्द रहेगा। अगर तुम्हें अरमान पसंद नहीं है तो मुझसे बहस करने के बजाय नव्यांशी से बात करो। अरमान की जगह वो किसी और लड़के को भी मेरे सामने लाकर खड़ा करती और ये कहती कि उसे उससे प्यार है, तब भी मैं उसे मना नहीं करता। हाँ, बशर्ते वो लड़का उसके लायक होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो उसके लायक नहीं है। थैंक गॉड आप मेरी बात समझे तो सही, वंश ने जल्दी से कहा। मुझे ऐसा नहीं लगता, अरमान राजावत फैमिली से काफी अलग है, ऊपर से शिवांशा उसके पास रही हुई है। अरमान एक अच्छा इंसान है और नव्यांशी ने भी उसे अच्छे से परखा है, वेद ने वंश को समझाने की कोशिश की। वंश फिर से बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि आराध्या ने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो चिढ़कर बोली, बस भी करो वंश, तुम और नव्यांशी बिल्कुल एक जैसे हो, अपने भाई बहन की लाइफ में किसी और को आने का स्पेस भी नहीं देते। आराध्या ने वंश को चुप करवा दिया था। उनका ब्रेकफास्ट लगभग हो गया था और शिवांशा पहले ही खत्म कर चुकी थी क्योंकि उनकी बहस के दौरान भी उसका ध्यान खाने में ही था। इस बीच प्रतीक गाड़ी लेकर वेद को लेने के लिए पहुंचा। बाहर हॉर्न की आवाज़ सुनकर वेद समझ गया था कि प्रतीक आ गया है। उसने शिवांशा की तरफ देखकर कहा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया है, ऐसा करो ऊपर बैक साइड में एक रेड कलर की फाइल है, वो लेकर आओ। शिवांशा ने हल्के से सिर हिलाया और ऊपर चली गई थी। उसने वेद की फाइल के साथ साथ अपने एडमिशन फॉर्म को भी ले लिया था। मुझे बाहर नहीं जाना, मैं कुछ भी करके इसे प्रतीक भैया को दे दूंगी और वो इसे सबमिट करवाएंगे, पर यह सब वेद की नजरों से छुपा कर करना होगा, पहले ही वो वंश भैया की वजह से इरिटेट है, शिवांशा ने खुद से बड़बड़ाकर कहा और धीमे कदमों से चलकर नीचे आई। वेद अभी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर था और ये उसके लिए अच्छा मौका था। शिवांशा ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं इसे दे आती हूँ। वेद ने भी उसे नहीं रोका। शिवांशा जल्दी से बाहर आई और वेद की फाइल के साथ साथ अपना एडमिशन फॉर्म भी प्रतीक को देते हुए धीमी आवाज में कहा, आपको जब भी टाइम मिलेगा क्या आप इसे यूनिवर्सिटी में सबमिट कर देंगे प्लीज? प्रतीक उसके चेहरे पर हिचकिचाहट देखकर सब समझ गया था। वैसे भी उसे छुपा हुआ नहीं था कि किस तरह शिवांशा बाहर जाने से घबराती थी। अगर वेद ने उसे खुद से सबमिट करने के लिए कहा था तो मतलब साफ था कि उसने कुछ सोच समझकर ही ऐसा किया होगा। प्रतीक हल्का सा मुस्कुराया और फॉर्म के बजाय सिर्फ फाइल शिवांशा के हाथ से लेते हुए कहा, इसे आप अपने पास ही रखिए, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल कर दूंगा, आप तैयार हो जाना, मैं आपके साथ यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। मतलब आप खुद से ये नहीं करेंगे? शिवांशा ने मुंह बनाकर कहा। करने को कर सकता हूँ, लेकिन भाई को पता चला तो हम दोनों को ही डांट पड़ेगी। प्रतीक ने सिर हिलाकर जवाब दिया। शिवांशा के पास और कोई रास्ता नहीं था, ऊपर से वेद भी उसी तरफ आ रहा था। उसने जल्दी से उस फॉर्म को अपनी साड़ी के पल्लू के नीचे छुपा लिया था। प्रतीक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था तो उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों में? वेद ने वहां आते ही पूछा। शिवांशा ने जवाब देने के बजाय विनती भरी निगाहों से प्रतीक की तरफ देखा ताकि वो वेद को कुछ न बताए। प्रतीक ने उसका इशारा समझ लिया था। वो वेद से बोला, भाभी मुझे टाइम मिलने पर घर आने को कह रही थी ताकि मैं इन्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दूं। अच्छा, क्या सच में? तुम कह रहे हो तो सच ही होगा, वरना इसका चेहरा देखकर तो यही लग रहा है कि ये एडमिशन फॉर्म तुम्हारे पास लेकर आई होगी और तुम्हें ये सबमिट करने का बोल रही होगी, वेद ने तंज भरे लहजे में कहा और फिर शिवांशा के हाथों की तरफ देखा जो उसने साड़ी से कवर कर रखे थे। वेद ने गहरी सांस ली और तुरंत शिवांशा की साड़ी को हाथ से ऊपर करके उस फॉर्म को अपने हाथ में ले लिया था। मतलब मैं सही था, वेद ने शिवांशा को घूरते हुए कहा। मुझसे नहीं होगा, शिवांशा ने धीमी आवाज में कहा। एक पल के लिए उसके चेहरे को देखकर वेद को यही लगा कि ना जाने वो उसके साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहा है।
वेद अपना फैसला बदलता उससे पहले प्रतीक जल्दी से बोल पड़ा, दोपहर को मिलते हैं भाभी, और प्लीज आप तैयार रहिएगा, और डोंट वरी, मैं आपके साथ जाने वाला हूँ तो आपसे हो जाएगा, आप कहेंगे तो मैं आपके लिए स्पेशली यूनिवर्सिटी जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी खोल सकता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं अभी भी मौजूद हूँ, चुपचाप अंदर बैठो, वेद ने उसे तुरंत झिड़का और गाड़ी में जाकर बैठ गया था। प्रतीक हल्का सा हंस पड़ा था क्योंकि उसने पहली बार वेद को किसी के लिए पोजेसिव होते देखा था। शिवांशा को दोबारा आने का बोलकर प्रतीक गाड़ी में जाकर बैठ गया था। उनके जाने के बाद शिवांशा वापस कमरे में आ गई थी और इसी के साथ उसे याद आया कि आज उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने पहले सपने को जरूर पूरा करेगी। शिवांशा इस वक्त खा जाने वाली निगाहों से अपने कमरे में लगे हुए काउच को देख रही थी। तो पहले दिन से ही मुसीबत की जड़ तुम हो, तुम हमारे बीच दूरियां लाने का काम कर रहे हो और सबसे पहले हमारे बीच से तुम्हें हटाना जरूरी है, शिवांशा ने सोफे को घूरते हुए कहा और तुरंत रानी को अपने कमरे में बुलाया। बोलिए भाभी, क्या काम है? रानी ने तुरंत पूछा। मुझे अपने कमरे में कुछ चेंज करवाने हैं, अगर मुझे कोई सामान हटाना हो तो क्या करना होगा? शिवांशा ने उसकी तरफ देखकर पूछा। उसका सवाल सुनते ही रानी ने थूक निकला। उसे अच्छे से पता था कि वेद के कमरे से कोई सामान हटाना तो दूर, कोई एक जगह से दूसरी जगह तक रखता था तो भी उसे पसंद नहीं आता था। रहने दीजिए भाभी, भैया को अच्छा नहीं लगेगा, रानी ने इनडायरेक्ट उसे समझाना चाहा। लेकिन मुझे भी कुछ सामान अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि वो काउच, बोलते हुए शिवांशा ने सोफे की तरफ इशारा किया और सिर हिलाकर कहा। मुझे इसे इस कमरे से हटाना है, पता है इसकी वजह से? खैर छोड़ो, मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, मुझे बस ये अपने कमरे में नहीं चाहिए। रानी ने लाचारी से एक नज़र सोफे की तरफ देखा। उसे अच्छे से याद था कि वो क्यों उस कमरे में लगाया गया था। वेद को कई बार रात भर काम करना पड़ता था और वो अपने कमरे में ज्यादा कंफर्टेबल फील करता था। नींद ना आए इसलिए उसने वहां पर सोफा और उसके आगे एक बड़ी सी एंटीक टेबल लगवाई थी। आज भी वो वैसे का वैसा ही था। नहीं भाभी, हम उसे वहां से नहीं हटा सकते हैं, वरना भैया गुस्सा करेंगे, रानी तुरंत बोली। अगर इसे यहां से नहीं हटाया गया मुझे भी गुस्सा आएगा, मैं कुछ नहीं जानती, पुराना फर्नीचर कहाँ रहता है, बस इसे हटाकर वहां पर रख दो, वैसे भी इसकी वजह से कमरे में जगह नहीं रहती है, ठीक से चल फिर भी नहीं सकते, शिवांशा ने बच्चों की तरह जिद पर अड़ते हुए कहा। रानी ने एक नज़र उस कमरे की तरफ देखा जो दो कमरों को जोड़कर एक कमरे में बदल गया था और जगह ना होने की बात किसी मजाक की तरह थी। वो कमरा पहले से ही काफी बड़ा था और दो सेक्शन में बांटा गया था, जहां एक तरफ वेद के सोने और उसके प्राइवेट स्पेस का हिस्सा था तो दूसरी तरफ काउच और बाकी काम से रिलेटेड चीजें रखी गई थी। उसके बावजूद भी उसमें अच्छी खासी जगह थी। उसके समझाने के बाद भी शिवांशा नहीं मानी तो मजबूरन रानी को बाहर आना पड़ा। कुछ भी करने से पहले उसने वेद को कॉल किया जो इस वक्त किसी मीटिंग में बैठा हुआ था। पहले भले ही वेद रानी के कॉल को इग्नोर कर देता था लेकिन अभी उस घर में शिवांशा भी रहती थी और कहीं उसे कुछ हो न गया हो, ये सोचकर वेद ने जल्दी से कॉल रिसीव किया। सब ठीक है ना रानी? वेद ने गंभीर आवाज में पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है भैया, भाभी यहाँ आपके कमरे में कुछ बदलाव करना चाहती हैं और आपको बदली हुई चीजें पसंद नहीं आती हैं, मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, रानी ने एक सांस में सब कुछ बता दिया था। आर यू सीरियस कि तुमने ये कहने के लिए मुझे कॉल किया है? अब वो रूम मेरे अकेले का नहीं है और उसे कुछ चेंज चाहिए तो करवाने दो, और प्लीज आगे से ऐसी छोटी बातों के लिए मुझे कॉल मत करना, वेद ने उसे डांट दिया था और फिर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। अच्छा हुआ मैंने पहले ही बता दिया, अगर अब भैया गुस्सा भी होंगे तो शिवांशा भाभी पर, रानी ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शिवांशा की इच्छा को पूरा करते हुए रानी ने उस काउच को उस कमरे से निकाल दिया था और सच में उसे निकालने के बाद अच्छी खासी जगह हो गई थी, उल्टा कमरा काफी खाली लग रहा था। शिवांशा के चेहरे पर विक्ट्री स्माइल थी, आखिर आज उसने अपने और वेद के बीच की दूरियों की वजह को खत्म कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग से फ्री होकर वेद प्रतीक के साथ अपने केबिन में था। प्रतीक, ऐसा करो, तुम शिवांशा को लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचो और प्लीज उसकी हेल्प मत करना। गाड़ी में बैठे रहना पर साथ ही उस पर नजर बनाए रखना। ध्यान रखना कि कोई उसके साथ बुरा बर्ताव ना करे और गलती से भी कोई राजावत फैमिली का मेंबर उसके सामने ना आ जाए। वेद ने प्रतीक को सब समझा दिया था और उसकी बात मानकर प्रतीक तुरंत वहां से निकल गया था। प्रतीक को वहां से भेजकर वेद खुद गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गया था। कुछ ही देर बाद वेद उस अस्पताल के आगे था जहां वो एक बार शिवांशा को अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सृष्टि के पास लेकर गया था। आज भी वेद शिवांशा के बारे में ही बात करने के लिए वहां आया था और इस वक्त उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर थे। एनी आइडिया कि वेद वहां पर क्यों गया है? चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट में तो पता चल ही जाएगा। और वेद को आज घर आने पर एक नया सरप्राइज भी तो मिलने वाला है। अगले पार्ट पर मिलते हैं।